शैतान बोलना चाहिए या जमरा बोलना चाहिए। लोगों ने बड़े एक हैवी अमाउंट दे करके वो क्या करते हैं, खेमे जिनके एक नंबर दो नंबर तीन नंबर खेमे होते हैं, अच्छा उनके बारे में क्या बोलेंगे, यार इनके खेमे ना शैतान के करीब है। इस तरह से आप देखें, एक तो वो पैसे बेचारे उन्होंने खर्च किए और दूसरा उनको ये सुनने को मिल रहा, ये भी इरशाद फरमाया जरा।
देखिए इसको यूं भी बोला जा सकता है कि इन लोगों के लिए एक इबादत की अदायगी आसान है। जब हज का एक मनसक अदा करने जाएंगे तो नज़दीक है और बेहतर अंदाज में अदा कर सकते हैं। असल तो वो अलामत है,
सही।
जमरा एक सतून को कहते हैं,
ठीक।
पहले वो सतून पतला सा था, अब उसको इंतहाई महारत के साथ के जो फिकही एतराज़ात होते हैं उससे बचते हुए
वाह
उसको बड़ा कर दिया गया है।
सही।
ये आज भी नीचे उतना ही छोटा है।
सही।
चौड़ा करने का मकसद ये है कि ज़्यादा लोग एक वक्त में कंकरी मार सकें।
ठीक।
इनके कंकरियाँ नीचे स्लोब है उसमें जाके असल जमरे ही को लगती हैं।
ठीक है।
यानी अंदर से खोखला है उसी को लगती हैं और फिर कई मंजिल बना दिया। कई मंजिल बना देने की वजह से लोग जो हैं वो कई मंजिलों पर एक बेवक्त कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो हलाकतें होती थी वो रमी के वक्त होती थी।
सही।
यहाँ लोग कुचले जाते थे। तो इस अंदाज़ में इसको बनाया गया है कि जो फिकही मामलात हैं उसका भी ख्याल रखा गया है। और असल तो ये सतून है और ये एक अलामत है, जैसा कि होता है ना कि भाई यादगार शहदा
जी,
भाई शहदा से यादगार। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे शहर में छुट्टों में एक यादगार शहदा बनी हुई थी, क्या था, एक सतून बनाया हुआ था, एक तख्ती लगी हुई थी, बस वो एक निशाने के तौर पर।
ठीक।
तो बाज़ मकामात सिंबल होते हैं, उसकी एक पहचान होती है। ये तो दुनियावी मामला है, तो दीनी एतबार से भी ये जो जगह है इस जगह को शैतान की मुलामत के लिए मुकरर किया गया है।
सही।
यहाँ पत्थर मारने से उसे मुलामत होती है, उससे नागवार गुजरता है, उसकी रसवाई होती है। तो हकीकत में तो हमारे सामने एक सतून है, शैतान नहीं है, लेकिन बादियों नज़र में उसकी रसवाई और उसको जो मुलामत का पहलू है वो गालिब है। अच्छा, पहले दिन की रमी का वक्त तुलवे फजर था, तुलवे शम्स है, यानी तुलवे फजर से शुरू हो जाएगा लेकिन तुलवे शम्स तक मकरू है, और उसके बाद तुलवे शम्स से लेकर जवाल का वक्त शुरू होने तक ये मसनून वक्त है, और मगरिब तक मुबाह वक्त है, और रात का जो वक्त है मकरू वक्त है। मकरू से मुराद है मकरू तंजीही, ऐसा नहीं है कि मकरू तहरीमी है। तो तेरहवीं की जो रमी है, तेरहवीं की रमी के हवाले से मामला ये है, सुबह से जवाल का वक्त ख़त्म होने तक मकरू वक्त है। तो जोहर का वक्त शुरू होगा तो जोहर का वक्त शुरू होने से लेकर मगरिब तक इसका जो वक्त है जो गैर मकरू हुआ है, अब इसका वक्त मगरिब के बाद नहीं है।
ठीक।
पिछली रमियों में तो यह था रात को वक्त था, तेरहवीं का नहीं है। तेरहवीं की रमी अलल इतलाक मुस्तहब है, और अगर फजर हो जाती है तो फिर वाजिब हो जाएगा कि रमी किए बगैर जाना जायज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो तेरहवीं की रमी भी करते हैं और तेरहवीं की रमी करके रवाना होते हैं।
ठीक।
अच्छा, रमी के ताल्लुक से एक चीज़ यह है कि पहले दिन सिर्फ बड़ा जमरे की रमी करनी है, और दूसरे तीसरे दिन अगर तेरहवीं की भी करनी है तो तीनों जमरों की रमी करनी है। थोड़ा सा एक फ़र्क भी है इसमें, जैसा कि पहले दिन जब जाएंगे तो मीना दाएं जानिब होगा और काबा शरीफ बाएं जानिब होगा।
सही।
यानी ये अगर जमरा है तो कंधा जो है ना सीधा कंधा मीना की तरफ है, उल्टा कंधा काबे शरीफ की तरफ है। जब ग्यारहवीं की और बारहवीं की रमी करेंगे तो दूसरी तरफ खड़े होना है। अच्छा, लोगों को पता नहीं चलता कि हम पहले दिन कहाँ खड़े हुए थे और दूसरे दिन कहाँ खड़े हुए, चूँकि इस तरफ के रास्ते ही बंद किए होते हैं। लोग फॉलो कर रहे होते रास्तों को,
ऐसे ही
तो वो रास्तों को करते करते करते, यानी इसका आपको ख़ास इल्तिज़ाम करना ही नहीं पड़ेगा, रास्ता ही वो खुला होगा जहाँ से आपने रमी करनी है। जो पहले जमरे की रमी है, दूसरे जमरे की रमी है, वो करने के बाद दुआ मांगनी है, खड़े हो जाएं अगर जगह मिलती है, किसी को तकलीफ़ और अजियत नहीं पहुँचती, वरना वहाँ खड़े होने देते नहीं हैं। और जो तीसरा जमरा है उसकी जो दुआ है वो चलते चलते करनी है।
ठीक।
ये एक दुआ का मामला है। तो रमी करते हुए बहुत सारे अफ़ाल अदा हो जाएंगे, तवाफ़ ज़ियारत भी हो चुका है, अब एक तो ये है कि मीना छोड़ना होगा और दूसरा ये है कि तवाफ़ विदा करना होगा। हाजी के लिए तवाफ़ विदा करना वाजिब है।
ठीक है जी। सर, रमी के हवाले से ये बताएं कि जैसे यार साड़ियाँ भी मार आमी भाई, मतलब हमारी भी जाके कंकरियाँ जाना हो ये मार देना, इस पर क्या कहते हैं आप?
देखिए, نیابت بعض صورتوں میں ممکن ہے، اگر کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، بہت شدید بیمار ہو گیا کہ چل کے وہ آ نہیں سکتا رمی کرنے کے لیے، اس کی نیابت کے لیے ماری جا سکتی ہے۔ پہلے کرنے والا خود اپنی کرے گا، پھر اس کی طرف سے کرے گا۔ اگر کوئی صحت مند ہے تو اس کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ رمی ہو جائے گی، بلکہ اس کو اپنی رمی خود آ کے ادا کرنی پڑے گی۔
اور اگر کوئی اور کرے گا اس پر ذمہ باقی رہے گا، حکم کیا لگے گا اس کے اوپر؟ یعنی جس نے رمی نہیں کی، یعنی جو ہے نا وہ اس نے گیارہویں کی رمی، تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی تھیں، خود مارنی تھیں، اور سیون سیون کنکریاں سب کو ساتھ ساتھ مارنی تھی، 21 مارنی تھی، اس نے بولا بھائی اب آپ جا رہے ہو یار، گرمی بڑی ہے، بٹ ٹھیک ہے آپ کرو، اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟
ترک واجب کا حکم ہے۔ اس کے اوپر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر ایام باقی ہیں، مطلب وہی دن باقی ہے، اسی دن رمی کرے،
ٹھیک،
وقت ہم نے بیان کر دیے،
صحیح،
یہاں تک کہ ایام رمی باقی ہیں،
صحیح،
گیارہویں کی نہیں کی، بارہواں دن آ گیا تو بارہویں دن اس کو قضا کرنی ہے، لیکن دم اب بھی ساقط نہیں ہوگا،
ٹھیک،
دم پھر بھی دینا پڑے گا،
صحیح،
لیکن جو ایک اس کے ذمے فریضہ ہے وہ اب بھی ہے کہ اگلے دن جا کے سابقہ دن کی بھی کرے، تو یہ اس کے لیے حکم ہے۔
یعنی ڈبل کنکریاں مارے گا،
ڈبل مارے گا،
ٹھیک،
اور دم بھی ادا کرے گا،
دم بھی،
اس نے اپنے وقت پر ادا نہیں کی تھی۔